लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि वर्तमान युग के परिवारों को प्रेम, सम्मान और मार्गदर्शन मिलता रहे तथा वे दिन ब दिन अपने विश्वास में विकसित होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबंस की जीवनी पर एक लघु चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। छोटानागपुर के प्रेरित लोगों को मुक्ति दिलाने वाले न्याय के शूरवीर और छोटानागपुर में कैथोलिक मिशन के संस्थापक फादर कॉन्स्टेंट लेबंस का नाम छोटानागपुर के इतिहास में सदा ऊंचा रहेगा। वे यीशु के प्रेम से इतने सराबोर थे कि किसी प्रकार की कठिनाई उन्हें विचलित नहीं कर सकी। छोटानागपुर के लोगों के लिए गरीबी और बेरोजगारी के कारण आज भी बहुत प्रकार की चुनौतियां हैं। हम फादर कॉन्स्टेंट लेबंस की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने लोगों की रक्षा करें। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबंस एवं फादर डिस्मिथ के व्यक्तिगत जीवन पर गौर किया था कि वे किस तरह अत्यंत गरीबी एवं त्यागमय जीवन व्यतीत करते थे, जिसके कारण फादर डिस्मिथ बीमार हो गए थे। इस सप्ताह हम देखेंगे कि फादर डिस्मिथ के बीमार हो जाने पर भी फादर कॉन्स्टेंट लेबंस बड़े साहस और धीरज से मिशन के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। फादर कॉन्स्टेंट लेबंस के अकेले हो जाने पर भी मिशन कार्य की गति धीमी नहीं हुई, बल्कि तेज होती गई। नए ख्रिस्ते बनने वालों की संख्या हर माह 500 थी, जो अब 1000 हो गई। जून के शुरू में फादर लेबंस रांची में थे। वे अपने लोगों को अदालत में मदद करने आए थे। फादर लेबंस का अपने लोगों को कोर्ट में मदद करने के लिए रांची आना कोई नई बात नहीं थी, फिर भी उनसे मुलाकात करना फादर मोटेट को अपार खुशी प्रदान करता था। रेक्टर फादर मोटेट ने फादर लेबंस के बारे लिखा, क्या ही काम करने वाला व्यक्ति है। 20 से अधिक स्कूल, 20 प्रचारक और 100 यानी अनगिनत गांवों की एक पल्ली, जिसको पार करने में 30 घंटे लगते हैं, और वे वहां अकेले हैं, अपने साथियों से दूर, प्रोटेस्टेंट एवं अक्रिस्तियों द्वारा अपमानित और दोषी। रांची से तौर पर लौटकर जून के अंत में फादर लेबंस ने प्रोविंशियल को पत्र लिखा, करीब 1000 लोग इस माह नए ख्रिस्ते बनेंगे, किंतु 1000 लोग भी इस घनी आबादी वाले क्षेत्र के लिए कुछ नहीं है, जो बेल्जियम उतना ही बड़ा है। ईश्वर मुझे शरीर की शक्ति, इच्छा की ताकत, बुद्धि की तेजी और उनकी कृपा के साथ सहयोग करने के लिए आवश्यक पौत्रता प्रदान करें, क्योंकि लगता है कि वे इस क्षेत्र को कैथोलिक बनाना चाहते हैं। इस महीना 11 गांवों के सभी मुंडा कैथोलिक बने। फादर डिस्मिथ अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने और मजबूत होने के लिए दार्जिलिंग गए हैं। ईश्वर को धन्यवाद कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस समय मुझे कठिन काम करना पड़ रहा है। काश मेरे लिए अधिक समय और अधिक दिमाग होता कि मैं ईश्वर की कृपा की क्रियाशीलता के बारे बेल्जियम को लिख पाता। इस पत्र में फादर लेबंस ने सिर्फ अपने बारे जिक्र किया था। उन्होंने सहयोगियों की मांग नहीं की थी और न ही सहायता राशि की मांग की थी। वे जानते थे कि फादर ग्रोसचीन उनकी मदद करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। वे फादर ग्रोसचीन द्वारा फादर प्रोविंशियल को लिखे पत्र के बारे भी जानते थे, जिसमें उन्होंने उनकी मदद और मिशन के लिए अधिक लोगों की मांग की थी। उन्होंने लिखा कि मांग के अनुसार छोटानागपुर में पुरोहितों की पूर्ति करना कठिन होगा। जब तौर पर विभाजित हो जाएगा तो 6 पुरोहितों की आवश्यकता होगी। हमारे पास आने वाले लोगों को वापस भेजना, मिशन की स्थापना से इनकार करते रहना मुश्किल काम है। जहां लोग हमें जानते एवं एक पुरोहित की उपस्थिति मात्र हजारों लोगों का मन परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त है। फादर ग्रोसजीन ने पत्र में प्रोविंशियल को बताया कि छोटा नागपुर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए 4 या 6 नए पुरोहितों की आवश्यकता है। फादर लेबंस का मिशन 80 मील के क्षेत्रफल में फैला है और उसे 3 जिलों में विभाजित होना है, जिसके लिए 6 पुरोहितों की जरूरत है, पर फादर प्रोविंशियल उनके इस बात से अधिक प्रभावित नहीं हुए। इधर सहयोगी की आवश्यकता का दबाव बढ़ने लगा। स्वास्थ्य में सुधार हेतु फादर डेस्मिथ के दार्जिलिंग जाने के कुछ दिनों बाद बंदगांव में फादर मुलेंडर भी बीमार पड़े और उन्हें भी दार्जिलिंग जाना पड़ा। इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए मिशन सुपीरियर ने पुनः अपनी मांग प्रोविंशियल के सामने रखी। अंततः उनकी बात सुनी गई और कुछ दिनों के बाद यूरोप से 3 नए पुरोहितों को छोटा नागपुर भेजा गया। यह मिशन के लिए बड़े राहत की बात थी, किंतु उनके आने के 6 माह बाद ही बंदगांव के फादर वान देर घोट बीमार पड़े और रांची जाने के रास्ते पर ही उनकी मौत हो गई। उनकी उम्र सिर्फ 36 साल थी। इन सब के बावजूद फादर लेबंस का काम तोरपा में नहीं रुका। मिशन उसी गति से जारी रहा। जुलाई के शुरू में उन्हें अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए रांची जाना था, किंतु वे समय नहीं निकाल पाए। आर्थिक समस्या भी उन्हें तोरपा में कैद कर रखी थी। जून के अंत में जब उन्होंने अपने मासिक खर्च समाप्त कर चुके थे, तब वे चावल पकाने के लिए ईंधन भी नहीं खरीद पा रहे थे। शायद फादर लेबंस बिना खाए ही आसानी से रह सकते थे, किंतु वे अपने प्रचारकों एवं स्कूल के शिक्षकों को चुकाने के लिए अधिक चिंतित थे। किंतु परिस्थिति जितनी अंधकारमय थी, उतनी ही अधिक वे ईश्वर और उनके द्वारा सौंपे गए मिशन पर दृढ़ थे। जुलाई के अंत में उन्होंने प्रोविंशियल को लिखा, ईश्वर की महिमा हो तोरपा में उनकी कृपा के लिए। तोरपा में नए ख्रिस्तों की संख्या पिछले साल की तुलना में 10 गुना अधिक हो चुका है। पिछले साल संत इग्नासियस के पर्व के समय ख्रिस्तों की संख्या 1000 थी। अब मेरे काम भी बढ़ गए हैं और खर्च भी, किंतु ईश्वर इसे प्रदान करेंगे। मेरे लिए चिंता की बात यह है कि मैं उधारी हूँ और इसे मुक्त होने का कोई उपाय नहीं दिख रहा है। फादर सुपीरियर मेरी मदद और नहीं कर सकते, फिर भी मुझे मेरे लोगों को वेतन देना होगा। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेवेंस की जीवनी पर एक लघु चर्चा सुन रहे थे। इस पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी।
धन्य कहो नाम उसका, धन्य कहो रे, उसका ही विधान उसे याद रहता है।
धन्य कहो नाम उसका, धन्य कहो रे, उसका ही विधान उसे याद रहता है।
उसके सभी कार्य बा कमाल है, याद रखो उसके सभी निर्णयों को। दर्शनों के लिए कामना करो।
धन्य कहो नाम उसका, धन्य कहो रे, उसका ही विधान उसे याद रहता है।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक दान पुण्य। लेखक हैं माइकल होजेस। श्रोताओं, दो वक्त की रोटी के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना अपने आप में अपने जमीर को मारने जैसा लगता है। शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति यदि भीख मांगे तो कुछ भी अनुचित नहीं, उन्हें भीख देना अवश्य पुण्य कार्य है। भारतीय संस्कृति में प्रातः उठकर दान देना, भूखों को भोजन एवं नंगों को वस्त्र दान पुण्य कार्य माना गया है। बेकारी की समस्या भी कुछ लोगों को भीख मांगने के लिए विवश कर देती है। पेट भरने के लिए यदि कोई नौकरी या मजदूरी न मिले तो विवश होकर व्यक्ति भीख मांगने लगता है। सबसे पहले ऐच्छिक भिक्षावृत्ति और मजबूरी वश अपनाई गई भिक्षावृत्ति में अंतर किया जाना आवश्यक है। यदि आप पुण्य कमाने की आड़ में ऐसे व्यक्ति को यूं ही दान कर देते हैं जिसे शायद आपके मदद की जरूरत न हो या जिनका व्यवसाय ही भीख मांगना है, तो आप उन बेचारे जरूरतमंद लोगों का हक मार रहे हैं जिन्हें सचमुच मदद की जरूरत है। यदि संभव हो तो उन्हें अपनी आजीविका कमाने में मदद करें। दान पुण्य करने से पहले एक बार जरूर सोच लें। आशा है आज का नाटक इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका दान पुण्य।
अरे जेनी, ये जेरी अभी तक ऑफिस से आया क्यों नहीं? शायद आज काम ज्यादा होगा, सो कर रहा होगा बैठकर।
हाँ, आपने ही तो सिखाया है कि आज का काम आज ही करना चाहिए, कल पर नहीं।
और डैडी, आप भूल गए क्या? आप ही ने तो दोनों भाई बहन को ये सिखाया है कि गरीब और अपाहिज लोगों की मदद और सेवा भी करनी चाहिए। तो हो सकता है कि जेरी भाई ऐसे ही किसी जरूरतमंद की मदद करने में लगे होंगे।
हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है।
लेकिन अपना ख्याल भी तो रखना चाहिए। दोपहर के लंच बॉक्स में आता ही कितना खाना है और अब 8:30 बजने वाले हैं।
तुम भी कमाल करती हो जेनी। अरे जेरी का ख्याल करने और रखने के लिए तो तुम हम सब हैं, लेकिन उनका भी तो सोचो जरा, जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है।
आपने बिल्कुल सही कहा।
अरे अपना खाना खा पी लेता और फिर दूसरों की सेवा किसने रोका है?
शायद आप ठीक कह रही है मम्मी, जेरी भाई को देर तो बहुत हो गई है।
अरे तुम माँ बेटी कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि दूसरों की मदद करके मन को कितनी शांति मिलती है? लेकिन अगर वे किसी भूखे को रोटी और तन ढांकने के लिए किसी को एक कपड़ा भर दे दें, यानी किसी जरूरतमंद की मदद कर दें, तो मन को अपने आप एक असीम शांति मिलती है।
ये तो आपने बहुत बढ़िया बात कही, इसमें कोई दो मत नहीं है।
आखिर डैडी किसके हैं?
चल डैडी की चमची, डैडी को मक्खन लगाना बंद कर और जेरी का खाना लगाने की तैयारी कर, वो आता ही होगा।
जेरी, क्या बात है बेटा? ऑफिस में काम ज्यादा बढ़ गया है क्या? कल तुम्हें देर हो गई थी।
नहीं डैडी, कल ऑफिस से आते समय मुझे स्कूल के पास एक भिखारी बैठा मिला था। पहले मैंने सोचा कि उसे कुछ पैसे दे दूं तो वो रात को कुछ खा लेगा। फिर सोचा कुछ खाने के लिए भी उसे वहां से बहुत दूर जाना पड़ेगा, इसलिए मेन रोड के चौराहे से मैंने उसे पोहे और कचौरी लाकर दे दिया।
मगर तुम्हें तो काफी देर हो गई थी जेरी।
हाँ पापा, पूरे समय ये भिखारी अकेले रहते हैं और अपना सारा समय ही अकेलेपन में गुजार देते हैं, इसलिए उसका अकेलापन दूर करने के लिए मैं यूं ही उससे बातें करने लगा था।
क्या बातें हुई?
उसी के बारे में पूछ रहा था मैं।
फिर क्या बताया उसने?
यही कि जबलपुर का रहने वाला है वो, और उसके बाप ने उसे काफी साल पहले घर से भगा दिया था क्योंकि उसका बाप उससे काम कराना चाहता था और ये पढ़ाना चाहता था। उसका बाप एक फैक्ट्री में काम करता है।
ये लड़का कहाँ तक पढ़ा है?
8वीं तक पढ़ा है।
तो अब क्या यूं ही भीख मांगता रहेगा वो?
लगता तो ऐसा ही है, लेकिन बेचारा करे भी तो क्या करे, उसका अपना कौन है? जो अपने थे उन्होंने उसे बेमौत मरने के लिए छोड़ दिया।
लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि वो भीख मांग कर ही अपना गुजारा करे। वो कहीं मजदूरी कर सकता है, हमाली कर सकता है।
लेकिन उस जैसे भिखारी को काम पर कौन रखेगा डैडी?
तुम ऐसा करना, कल उसे यहाँ अपने घर ले आना।
जी।
मैं उसे कुछ बातें समझाना चाहता हूँ, फिर मैं उसे अपने यहाँ पैकिंग के काम में लगवा दूंगा।
ठीक है डैडी।
या ऐसा करना, उसे कल मेरी कंपनी के ऑफिस में भेज देना। ठीक है?
ठीक है डैडी।
अभी तो भिखारी है वो, मगर मैं उसे एक कमाने वाला, मेहनत से पैसे कमाने वाला इंसान बनाना चाहता हूँ।
ये एक बढ़िया बात होगी डैडी, कल मैं उसे आपके ऑफिस का पता समझाकर आपके पास भेज दूंगा।
जेरी भाई, ये पुराना चादर उस भिखारी को या किसी और भिखारी को दे देना।
ठीक है, यहाँ रख दे। लेकिन एक बात बताऊँ, बहुत कम भिखारी ही होंगे जो किसी के दिए कपड़ा आदि संभाल कर रखते और यूज करते हैं, वरना तो वे यहाँ वहाँ कर देते हैं। अच्छे कपड़े होते हैं तो वे इसे साप्ताहिक हाट में पुराने कपड़े बेचने वालों को औने पौने दाम में बेच देते हैं।
हमारा काम किसी जरूरतमंद को कुछ देना है, देकर यह देखना नहीं कि वह उसका क्या कर रहा है। इसलिए किसी जरूरतमंद को कुछ दो और देकर भूल जाओ।
सच कहा मम्मी, सुख देने में है, दिए हुए का हिसाब रखने में नहीं।
अरे जेसी, जरा जल्दी से एक काम और कर देना, मेरे कबर्ड से काली पुरानी जीन्स और गुलाबी चेक्स की पुरानी शर्ट लेते आना, उस लड़के को दे दूंगा, वही पहनकर उसे डैडी के ऑफिस ले जाऊंगा।
क्यों?
डैडी उसे अपनी कंपनी में पैकिंग वर्कर के रूप में लगवाने का कह रहे थे।
अच्छा है, लड़के की जिंदगी सवर जाएगी।
जेसी, अरे जल्दी कर यार।
इतनी जल्दी क्यों मचा रहा है बेटा, अलमारी तेरी है, उसे ढूंढने में टाइम तो लगेगा ही ना।
मम्मी, मुझे शशांक की पार्टी में जाना है, बर्थडे पार्टी में। अभी पहले उस लड़के को जाकर पहले सामान देना है, फिर वहाँ से निकल कर ही मैं उसकी पार्टी में जा पाऊंगा। अब ये सब क्या, एक एक चीज मैं हाथ में उठा कर ले जाऊंगा। अरे जेसी, कोई थैली वगैरह में डाल इसे।
वो थैली उतार कर ये सब उसमें डाल दे जेसी। और जेरी सुन बेटा, पार्टी में ज्यादा देर न करना, जल्दी आ जाना। बाय बेटा।
जेरी, तुमने उस भिखारी लड़के को भेजा नहीं मेरे पास, तुमने उससे कहा था?
हाँ डैडी, कल शशांक की बर्थडे पार्टी में जाने से पहले मैं उसे कुछ कपड़े और खाना देने गया था। तब मैंने उसे कहा था कि आज सुबह मैं उसे लेने आऊँगा, लेकिन आज सुबह ऑफिस के पहले जब मैं उसे लेने उसके ठिकाने पर पहुँचा तो वो वहाँ से गायब था।
ये भिखारी ऐसे ही होते हैं जेरी।
जब बिना काम किए ही भीख के रूप में कमाई होती है तो फिर कौन काम करना पसंद करेगा भला?
कई भिखारियों ने तो भीख मांगने को ही अपना धंधा बना लिया है। यही लोग वास्तविक अपाहिज और गरीब भिखारियों का हक भी मारते हैं और उनके लिए लोगों के मन में एक गलत छवि भी बनाते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं बच्चों कि हमें दान या भिक्षा नहीं देनी चाहिए। हमें दान भी देना चाहिए और भिक्षा भी, लेकिन उन लोगों को जिनको वास्तव में इस चीज की जरूरत हो।
और जो लोग हट्टे कट्टे भिखारी और बनावटी भिखारियों को कुछ देते हैं तो?
जिसे मदद की जरूरत ही नहीं है उसके लिए कुछ मदद करना दिखावा और ढोंग है। मान लो कोई गरीब आदमी काम करके पैसे कमाना चाहता है, तो उसे जरूर काम देना चाहिए क्योंकि वो मेहनत करके कमाना चाहता है।
और बेटा, बनावटी भिखारियों की मदद इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि असली जरूरतमंद भिखारियों का हक यही लोग मारते हैं। जो मदद असली जरूरतमंदों तक पहुंचनी चाहिए थी वो मदद इन बेजरूरतों के पास पहुंच जाती है।
यानी कि मदद या सेवा भी उसी की करना चाहिए जिसको उसकी जरूरत है, और जिसको मदद या सेवा की जरूरत ही नहीं है और लोगों या भगवान को दिखाने या पुण्य कमाने के नाम पर यदि उनकी सेवा की जाए तो यह सब दिखावा या फिर ढोंगी है। बिल्कुल समझ गया डैडी।
जिसने इस बात को समझ लिया है वही सच्चे दिल से सच्ची मदद और सच्ची सेवा या सच्चा दान पुण्य कर सकता है।
दान पुण्य, अभी आपने यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे दिव्या शूलिया, भावना प्रधान, राघवेंद्र सिंह राघव और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।